मूसा अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा आप मिस्र आए हैं, भाई को मिले होंगे, माँ को मिले होंगे, फिर चले पड़े जहाँ अल्लाह ने कहा, सीधा दो टोक। आप ज़रा सोचें कि मूसा फिरौन के दरबार में है और हालात क्या हैं। फलम्मा जाअहुम मूसा बिआयातिना बय्यिनात, फिर जब आए मूसा फिरौनियों के पास हमारी रोशन निशानियां लेकर, वही हुआ जिसका डर था। कालू मा हाज़ा इल्ला सिहरुम मुफ्तरन, कहने लगे नहीं है ये मगर एक जादू घड़ा हुआ। वही बात, दावत के नतीजे में तकजीब, मोजा दिखाए या दे पैसा दिखाए आसा दिखाए, कहने लगे तो जादू है और खुद ही घड़ के ले आए। और दूसरा बड़ा इतराज जो हर दौर में लोगों को रहा, वमा समेना बिहाजा फी आबा इनल अव्वलीन, हमने तो अपने आबा अजदाद में ऐसी कोई बातें सुनी ही नहीं थी, हमने कुछ नहीं सुना। आबा इना और फिर अल अव्वलीन, ये चीज़ है जो लोगों को हक से दूर करती है कि भाई बाप दादा किधर थे, उन्होंने तो ये नहीं सुनी, अब आपने ये बातें हमें कहाँ से सुनानी शुरू कर दी। देखिए जो इस सवाल में उलझ जाएगा ना, वो कभी हक तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि बाप दादा ने तो कभी टेलीफोन भी नहीं सुने थे, बाप दादा ने तो कभी कंप्यूटर भी नहीं देखे थे, उन्होंने तो कभी इतना तरक्की याफ्ता माहौल भी नहीं देखा था। तो दीन के मामले में लोग अपने आप को हमेशा रियर गियर में रखते हैं, पीछे चलो, उन्होंने नहीं सुना था तो हम भी नहीं सुनते। वही बात कि जिसको नहीं मानना उसको नहीं मानना, दलाइल नहीं मानने चाहे तो उल्टी सीधी बातें करने लग गए। वकाल मूसा, अब देखिए मूसा उलझे थोड़ी हैं, काम की बात की, रब्बी आलमु बिमन जा बिल हुदा, मेरा रब खूब जानता है कि कौन नूरे हिदायत लेकर आया, मैंने इन दी ही उसके पास से। वमन तकूनु लहू आकिबतुद्दार, और किसका होगा इंजाम घर का अच्छा, कौन बामुराद होगा, किसका इंजाम अच्छा होगा, अल्लाह को पता है। इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, और नहीं फलाह पाते उसके पास जालिम लोग, जो लोग जुल्म करते हैं उनको हिदायत नहीं मिलती। अब देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं डरे, बिल्कुल नहीं झिझके, बात पहुंचा दी, ना फिरौन की धमकियों से मुतासिर हुए और ना मूसा अलैहिस्सलाम अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम की वजह से थोड़ा सा कमज़ोर हुए। यही आज मुसलमानों को करना चाहिए, कोई उनको टेररिस्ट कहे, फंडामेंटल कहे, यानी कितने इल्ज़ाम लगते हैं मुसलमानों पे, आप केयर ही ना करें। जैसे आप देखें ना, बच्चा इधर हो ना तो खराबी कर रहे, कुछ जा रहे उधर, आप उसको बुलाएं, ओ शरारती, वो लगा वो सीधा जाएगा, जाके जिससे आप रोकेंगे वो काम करके आ जाएगा। दीन के मामले में इस तरह बच्चा बन जाना चाहिए, किसको कहा, मुझे तो नहीं कहा, मैं तो समझी नहीं, मैं तो समझ ही नहीं रही आपकी बात, करके अपना काम आ जाए। हम जब पहले ही धमकियां दे के और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने लगते हैं ना, उसकी वजह से फिर लोग हमें दीन का काम करने भी नहीं देते। और यहाँ देखिए कितना प्यारा मूसा अलैहिस्सलाम का नज़रिया है कि रब्बी आलमु बिमन जा बिल हुदा, क्या मूसा को नहीं पता था कि वो हिदायत लेकर आए हैं, ये कहने की बजाय कि हाँ मुझे पता है कि मैं हिदायत पर हूँ, ये कह दी भाई अल्लाह को पता है हम में से कौन हक पे है। आज भी देखिए दो गिरोहों में इंतजाद हो सकता है ना, वो कहता है मैं हक पे हूँ, वो कहता है मैं हक पे हूँ, आप कहें छोड़ो आओ नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को पता है कौन हक पे है, डाउट नहीं है, बल्कि अगले को लेट डाउन नहीं किया उन्होंने, बल्कि चिढ़ नहीं चढ़ाई, अपना काम करवा दिया। और ये जो बात है ना, ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, के जालिम लोग कभी फला नहीं पाते, तो यहाँ फिरौन के ज़मीर को झंझोड़ा, जालिम तो था ही, मुशरिक भी था, इनको साहिर कह रहा है, कभी झूठा कह रहा है, और उसके बाद बनी इसराइल पे जुल्म कर रहा था, किस तरीके से उनसे बेगार लेता था, तो कहा देख लो फिर, अब तुम अगर शिर्क के मुबतला हो या हकूकुल बात में कमी करते हो तो फला तुमको नहीं मिलेगी। अब फिरौन कहाँ सुन सकता था भाई, जो बंदा अपने नाम से आगे ना कहीं जाए, वो बड़े दरबार में बार बार अल्लाह की बातें सुन रहा है, एकदम सीखपा हो गया, बड़ा नागवार गुजरा, चीख उठा वकाल फिरौनो, और पुकारा चीखा फिरौन, या अय्युहल मलऊ, अहले दरबार, मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, हैरत देखिए जरा बेचारे की, मैं तो नहीं जानता तुम्हारे लिए मेरे सिवा कोई और खुदा है, यानी क्या ख्याल है मेरे सिवा कोई और खुदा है तुम्हारे पास। अब वही बात है कि झूठे सहारे ले रहा है कि मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी खुदा को नहीं जानता, मतलब क्या था कि बेवकूफ़ी में और घबराहट में उसके मुंह से जुमले भी ठीक नहीं बोले जा रहे थे, ये जुमला ठीक नहीं वो बोल रहा, लेकिन घबराहट दिखाई जा रही है, ये नहीं वो कह रहा था कि भाई मैं ज़मीन और आसमान का खुदा हूँ या इस तरह का हूँ, बल्कि मुराद क्या था कि मुझे पूजो, मैं बड़ा हूँ, मैं मेरे आगे सजदा करो। फ़ाउक़िद ली या हामान अलत तीनी, बस आग जलाओ मेरे लिए ए हामान अलत तीनी, मट्टी की यानी ईंटें। फिर फज अली सरहल, फिर बनाओ मेरे लिए ऊंचा महल, ताकि लाली अतले ओ इला इलाही मूसा, शायद कि मैं इस पर चढ़कर सुराख लगा लूँ मूसा के खुदा का। लेकिन मुझे अभी यकीन है क्या, व इन्नी लअज़ुन्नुहू मिनल काज़िबीन, मैं तो इसके बारे में ख्याल करता हूँ कि वो झूठा है। अब आप देखिए कि यहाँ से आपको फिरौन का तकब्बुर दिखेगा। हामान को पुकार रहा है कि हामान एक महल बनाओ। अब ये हामान कौन था, इसका नाम पीछे हमने देखा, तذکرہ हो चुका है इस पर कि हामान उसके दरबार में रहता था, बहुत अमीर था, आप कह लें कि माली तौर पे बहुत मज़बूत शख्स था। फिरौन ने उसको हुक्म दिया कि जाओ और तुम एक महल बनाओ। असल में वो मुजाहरा दिखाना चाहता था, मूसा अलैहिस्सलाम को छोटा करने के लिए उसने अपने मुल्क के जो पैसे वाले लोग थे उनको अपने इर्द गिर्द जमा किया था। ये बिल्कुल वही जहनियत है जो आज के दौर में खमेनिज्म की है, कि जो इस तरह से अपने सिवा लोगों को दूसरों की तरफ झुकने ही नहीं देते। किस तरीके से लोग अल्लाह की बातें करते हैं, हम सब हैं इस तरह के हैं वैसे हैं, और कहते हैं कि वाकई उसने एक बहुत बड़ा महल बनवाया और कहा कि ज़रा मैं चढ़ के उस पर देखूं तो सही कि मूसा का रब है कि नहीं। सुनने में बात कितनी मायूब लग रही है, लेकिन आपको पता है कि आज के दौर में थोड़े से लफ्ज़ों के फ़र्क से यही बातें सुनने को मिलती हैं। चंद साल पहले एक अखबार में खबर भी छपी थी कि किसी शख्स को बहुत ऊपर बादलों में दिखाया गया और वहाँ बादलों में देखे यूं जैसे ऊपर ढूंढ रहा है और कहता है वेयर इज़ गॉड, खुदा किधर है। इसी तरह ये जो लोग चांद पे जाते हैं, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स बनते हैं, तो इनकी तरफ से भी ऐसी बातें मुसलमानों की तरफ आती हैं कि हम तो इतने आसमानों पर जाके देखा है, हमें तो अभी तक मुसलमानों का खुदा कहीं नहीं मिला। रशियन प्रेसिडेंट था या प्राइम मिनिस्टर, उसकी बात भी सुनाई थी पहले गालिबन, कि किसी मौके पे जहाज़ में था तो वहाँ एक मुसलमान जर्नलिस्ट भी था, तो बादशाह को मजाक सूझा, उसने कहा कि तुम मुसलमान कहते हो कि हमारा खुदा ऊपर है, तो हम तो इतनी बुलंदी पे आए हुए हैं, तो दिखा दो। अब वो अगर डर जाता, झिझकता था, नहीं नहीं शर्मिंदा हूँ, कुछ ना होता, लेकिन वो बोलता और ऐसा बोल होना बहुत बाबरकत होता है। कहने लगा कि सदर साहब आप ज़रा जहाज़ का दरवाज़ा खोलें, आपको सामने ही दिख जाएगा, सारे फरिश्ते भी दिख जाएंगे ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सही से बात करें। कहा तली इला इलाही मूसा, हम देखना चाहते हैं किधर है मूसा का इला। ये मजाक उड़ा रहा था। और वह इन नीला जुन्नहु मिनल काज़िबीन, अल्लाह ताला कहते हैं ऐसी जुरत किसको होती है। वस्तकबरा हुआ व जुनूदुहु फिल अर्दी बगैर अल्हक, उनको जो तकब्बुर करते हैं, तकब्बुर किया उसने और उसकी फौजों ने ज़मीन में ना हक। और वज़न्नु अन्नहुम इलैना ला युरजऊन, और उन्होंने ये गुमान किया कि वो हमारी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। रिवायात में आता है कि हामान ने इस महल की तामीर पर 50,000 वर्कर लगाए, लकड़ी लोहे का काम करते थे और इतना ऊंचा बनाया कि उस दौर में उससे ऊंची कोई इमारत नहीं थी। जब तैयारी पूरी हो गई, महल पूरा सेट हुआ, अल्लाह ताला ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि इस महल को गिराओ। उन्होंने आके सिर्फ एक हल्की सी ज़र्ब लगाई और वो पूरा महल जो था 3 टुकड़ों में नीचे गिरा और हज़ारों फिरौनी फौजी जो थे वो उसके अंदर आके मर गए। क्या मुश्किल है, बड़ी इमारतें बनाकर बंदा अल्लाह तक तो नहीं पहुंचता, छोटी जगहों पर रह कर रब तक रसाई हो वो ज़्यादा बेहतर है, बड़ी बड़ी इमारतें सजा के संवार के उनमें जाकर खुदा फरामोशी करने पे। आज मुसलमानों में भी ये ट्रेंड दिखने लगा, ऊंची इमारतें बड़ी बुलंदियों पर, नीचे ज़मीन खाली पड़ी है लेकिन आप टावर ऊपर बना रहे हैं, नीचे फैला लें, ज़मीन तो इतनी है, लेकिन फिर नाम ऊँचा नहीं होगा ना। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भाई लोग हमारे मुल्कों में आएँ और देखें, ये टूरिस्ट को बुलाने की बातें ना। और आप देखें कि किस तरह एक से एक दूसरा ऊंचा बढ़ता है, ये ट्रेंड मुसलमानों में पहले नहीं था, अब हो गया कि अब हमें दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनानी है, दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी बनानी है, तो ये तो बड़े बंदे हैं ना। बेमकसद इमारतें कभी भी पसंदीदा नहीं रहीं, कौम आद का यही गुनाह था जिस पे हम पीछे बात कर चुके हैं कि उनको अल्लाह ताला ने किस तरह नीस्तो नाबूद कर दिया। इधर भी यही हाल हुआ, फ़ाखस ना हुआ जुनूदा हु, बस हमने पकड़ लिए इसको और इसके लश्करों को, फनबस ना हम फिल यम्मी, और फेंक दिया इनको समंदर में, देखना हो तो जाके देख लो, فنظر کیف کان عاقبت الظالمین، بس دیکھو کیسا ہولناک انجام ہوا ظلم و ستم کرنے والوں کا. یعنی آج بڑا ہونے والا، بڑا بننے والا کتنا چھوٹا ہوا کہ سمندر کے پانی نے بھی اس کو بنانا دی، اور اس طریقے سے اس کو اٹھا کر پٹخ دیا کہ آج تک نشان عبرت بنا ہوا ہے. دنیا سے تو اس کا معاملہ ختم ہوا، لیکن آگے جا کے کیا ہوگا؟ بہت عبرت والی آیتیں ہیں. فرمایا وجعلناہم ائمۃً یدعون الی النار، پس ہم نے ان کو بنا دیا ایسے پیشوا جو بلا رہے تھے اپنی رعایا کو آگ کی طرف. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور روز محشر ان کی مدد نہ کی جائے گی. ایک تو اس کا معنی اس طرح سے بنتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ بلا رہے تھے آگ کی طرف، دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ کل جہنم کی طرف پیش رو بنا کر پیش کیے جائیں گے، اور اپنے ماننے والوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. ہر ظالم جو ہوتا ہے دنیا میں لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، دنیا میں گناہوں کی جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور آخرت میں اصل جہنم کی طرف بلائیں گے. کیا ملا ایسے لیڈر کے پیچھے لگ کے؟ دیکھیے لوگ جب ٹیپ ٹاپ سے اور مروب ہو جاتے ہیں نا بڑی بڑی باتوں سے، تو آپ سوچئے کہ ان کو یہ نہیں یاد رہتا کہ یہ بلائیں گے کدھر اور جائیں گے کدھر. کس طریقے سے دنیا میں لوگ غلط لیڈروں کے پیچھے لگ کے غلط کام کرتے ہیں، تو کیا کل قیامت کے دن ان کے کہنے پہ آگ کی طرف جانا چاہیں گے؟ یہ قسم کا استعارہ استعمال کیا گیا، مجازی معنی ہے. کیسے ہوگا؟ عملی طور پہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ لا ينصرون، مدد نہیں کی جائے گی. اتنے بڑے، خود دنیا میں اتنے بڑے نام رکھنے والے کل قیامت کے دن دوسروں کو تو آگ میں بلائیں گے ہی، خود بھی جائیں گے، اور جو سب سے بری بات ہے کہ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی. کوئی اپنے بچے کا نام فرعون نہیں رکھے گا. کبھی آپ نے آج تک بگڑے سے بگڑے انسان کو اپنے بچے کا نام ابلیس رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، الا یہ کہ انسانیت بالکل ہی مسخ ہو جائے. کیا ملا؟ ایک طرف حضرت ابراہیم ہے، وجل لسان الصدقن فی الآخرین، کہ اللہ میرے بعد میرا ذکر خیر رکھنا، اور ایک طرف فرعون ہے کہ اس کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن اس کا شمار بھی قباحت میں مبتلا لوگوں میں ہوگا. مقبوحین، یہ جو ہے نا مقبوح کی جمع ہے، کاف با ہا اس کا روٹ ہے. اس کے کئی مختلف معنی ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ملعونین، لعنت کیے ہوئے لوگ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے بگڑ گئے ہوں گے، رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی، اور جس کو ہر بھلائی سے دور ہانک دیا گیا ہو اسے مقبوح کہتے ہیں. اسی طرح مردودین، مردود لوگوں میں سے ہوں گے، رد کر دیے جائیں گے ہوں گے. اسی طرح مقبوحین کا ایک معنی بنتا ہے ڈکشنری میں مترددین، تو ایسے تار آدھا، یعنی جن کو بالکل ہانکا جائے گا، بڑے برے حال میں ہوں گے. استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ ہم ان کو دیکھیں، لیکن یہاں سے دیکھتے ہی ایک بڑی ڈرونی شکل بنتی ہے. اور دنیا میں بھی اگر آپ فرعون کی ممی کو دیکھیں تو وہ دیکھ کے کوئی زیادہ اچھا تصور نہیں دیتا. ایک یہ کہ زندگی میں بڑے بنے، بعد میں لعنت، اور مقبوحین. ایک یہ کہ دنیا میں اللہ کے دین کے لیے ذرا سے نیچے ہوئے لوگوں نے باتیں کر لی، لیکن اس کے بعد کی خیر مل گئی. کون سا مقام اچھا ہے؟ یقیناً بات والی بات اچھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے برے انجام کے بعد موسیٰ کی بات کی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا کن کو؟ کئی قوموں کو. القرون الاولی، پہلی نافرمان قوموں کو. اشارہ فرعون کی طرف ہے. یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ اس جملے کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں جو جملہ بہت دفعہ پیچھے بولا، کہ تورات فرعون کے ڈوبنے کے بعد ملی تھی. بعض لوگ بڑی لے میں کہتے ہیں موسیٰ نے فرعون کو تورات کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی. کوئی آیت نہیں پڑھ کے سنائی، بعد میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، پہلی بستیاں ختم، سب کچھ گیا، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. ایک مقصد پورا ہوا. یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے کہ موسیٰ کی نبوت کے دو مقصد تھے. ایک تھا بنی اسرائیل کی آزادی، اب یہاں پورا ہوا، پہلا مرحلہ تمام ہوا. فرعون ڈوب گیا، بنی اسرائیل آزاد ہو گئے، وادی تی میں آ گئے. وہ ساری کہانیاں یاد کر لیں جو سورہ بقرہ میں سنی تھی. 40 साल वादी यतीम में रहे, वहाँ जो भी अल्लाह ताला के इनाम व कराम हुए, और उसके बाद फिर वो कौम जो थी बैतुल मक़दस की तरफ गई। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरबियत करना चाहते हैं, और तरबियत के लिए किताब की ज़रूरत होती है, इसीलिए फरमाया कि बसाइर अलिन्नासि व खुदं व रहमा, लोगों के लिए बसीरत अफरोज और सरापा हिदायत और रहमत थी वो किताब, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत कबूल करें। यहाँ क्या पता चला कि ग़ुलामी में जब कौमों का ज़मीर मुर्दा हो जाता है तो वाकई अच्छे लीडरों की ज़रूरत होती है जो उनको किताब की तरफ लेकर आएँ। वो किताब उनको सिर्फ़ लोरियाँ देने वाली ना हो, तसलियाँ देने वाली ना हो, बल्कि वो किताब उनके लिए दलाइल हिदायत और रहमत का सबब हो। अब अल्लाह के नबी को बीच में मुखातिब किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई कहानी सुनते हुए बिल्कुल मगन था, और एकदम उसको पुकारते हैं कि आपको मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह अपने नबी को फरमा रहे, वमा कुंत भी जाने बिल गरबी जी, और ए नबी नीचे लिख लें कुंता के नीचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि फिर सेंस समझ ही नहीं आती जब तक ज़मायर ठीक ना हो। बात चूँकि पीछे मूसा की थी तो लग रहा है कि शायद जहाँ मूसा है, नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी के दौरान अब अल्लाह अपने नबी को फरमा रहे हैं, ए नबी आप तो तूर की मगरबी सिमत में नहीं थे। इशारा है उसी जगह पे जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली और किताब मिली। कहा कब? इस कदईना इला मूसल अमरा, जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रिसालत का हुक्म भेज दिया। वमा कुंत मिन शाहिदीन, और ना आप उस वक़्त हाजिर लोगों में से थे। बहुत खूबसूरत आयत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम सब के अकीदे की इस्लाह की जा रही है कि जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिल रही थी, और आगे फिर दो तीन आयतों में इकट्ठा ही होगा, नबी उस वक़्त मौजूद नहीं थे। इससे अगली आयतों को भी साथ लेते हुए समझ लीजिए कि आज के दौर में बाज़ लोग नबी सल्लम के बारे में हाजिर नाजिर का अकीदा रखते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लम सब जगह थे, कश्ती नूह डूब रही थी और आप खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये खुद एक नात में मैंने ये बात सुनी, कश्ती नूह डूब रही थी और आप मुस्कुरा रहे थे, आदम को सजदा कर रहे थे फरिश्ते और आप खड़े मुस्कुरा रहे थे। ज़रा सोचिए कैसी बातें बनती हैं। अल्लाह करें वमा कुंता, आप देखें सारा मैं तक पढ़ती हूँ फिर इस पर थोड़ी बात करेंगे। पहला कहा कि आप मगरबी सिमत की जानिब नहीं थे जबकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पुकारा। मगरबी गोशे से मुराद जजीरा नुमा सीना का वो पहाड़ है जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत के अहकामात दिए गए थे। हजाज के मगरबी जानिब था इसलिए आपको मगरबी कहा गया, मक्का में थे आप उस वक़्त। इस कदई नैला मूसल अमरा वमा कुंता मिन शाहिदीन, दूसरा जुमला नोट कर लें, दूसरी दफ़ा आपके लिए कुंता का लफ्ज़ आया कि आप नहीं थे गवाहों में। किन शाहिदीन में से ना थे? जिन्होंने बनी इसराइल की तरफ से हज़रत मूसा के साथ कोहे तूर पर जाकर अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा किया था। पीछे पढ़ चुके हैं 70 सरदारों की तरफ इशारा है, सूरत आराफ की आयत 155 में हम इसकी डिटेल पढ़ चुके, और आज भी बाइबल में किताब खुरूज के बाब नंबर 24 में इनका तज़किरा है कि उन्होंने जाके कह दिया था कि हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं, आप उस वक़्त भी ना थे। वलाकिन अनशाना कुरूनन, लेकिन हमने पैदा फरमाई कई कौमें यके बदीगरे। फिर क्या हुआ? फ़तताल अलैहिमुल उमर, और काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया इन पर, यानी उसके बाद कई नस्लें आईं मूसा के बाद जिनको जिन्होंने तौरात को बदल दिया, हज़रत मूसा के दीन को चेंज कर दिया, तौरात के पैगाम बदल गए, आप उस वक़्त भी कुछ ना कर सके। तीसरी दफ़ा आ रहा है वमा कुंता, और ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो उस वक़्त भी ना थे। सावियन फ़ी अहली मदयन, मदयन में रहने वालों में, सावियन सावी से है कि किसी जगह रहना, यानी अल्लाह के नबी आप तो उस वक़्त भी नहीं थे जब मदयन में हज़रत मूसा के साथ ये मामले हुए कि तत्लू अलैहिम आयातिना, क्या आप पढ़कर सुनाते उनको हमारी आयतें। वलाकिन्ना कुन्ना मुरसलीन, लेकिन हम ही थे रसूल बनाकर भेजने वाले। सावियन का लफ्ज़ जो है ये सा वाव और या से है, इसका लफ्जी माना होता है दफन करना, किसी जगह ठहरना, आबाद करना। हमारे यहाँ इंग्लिश में इसके लिए एक लफ्ज़ आता है परमानेंट रेजिडेंट, हमेशा कहीं जगह रहना। कब्र भी चूँकि इंसान की इस दुनिया के बाद एक परमानेंट सी जगह बन जाती है क़यामत से पहले, इसी तरह जन्नत का ये टुकड़ा है या जहन्नुम का एक टुकड़ा है, इसी लफ्ज़ से फिर मुस्तवी भी है, जहाँ किसी को हमेशा रहना पड़े। पीछे हम पढ़ चुके सूरह यूसुफ में अकरमी मसवाहू। अजीज़ मिस्र ने अपनी बीवी को मशवरा दिया था कि इस बच्चे की अच्छी इज्जत करना, तो वो लफ्ज़ भी इसी से क्याम पज़ीर होना, ख़ास तौर पे वहाँ रहना जहाँ बाप दादा पोते वगैरह रहे, यानी जद्दी पुश्ती के मानों में आता है। यानी अल्लाह ताला अपने नबी को कहते हैं कि आप तो कोई जद्दी पुश्ती तौर पे मदीन के रहने वाले नहीं थे, फिर ये सारी खबरें इनको क्यों दी? क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से ये सब कुछ बता दिया। चौथी बार आगे आ रहा है, वमा कुंत बिजानिबे तूर इज़ नादैना, और आप उस वक्त भी ना थे तूर के किनारे पर जबकि हमने मूसा को पुकारा। इशारा है इसमें मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा गया जबकि वो मदियन से वापस आ रहे थे। वला की रहमतम में रब्बी का, लेकिन ये अपने रब की रहमत है। लितुन ज़रा कौम आता हम नज़ीर मिन कबलिक, ताकि आप आगाह करें उस कौम को जिनके पास कोई आगाह करने वाला नहीं आया आपसे पहले। लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कि वह नसीहत कबूल करें। बड़े खूबसूरत तरीके से चार दफ़ा अल्लाह के नबी के उस वक्त मौजूद ना होने का तذکرہ करके मक्का वालों पर एक एहसान, क्या अल्लाह ने उस कौम में नबी बनाकर आपको भेजा है, जो पिछली वाक़यात सुनाकर आपकी बातें लोगों को बताकर उनकी तरबियत कर रहा है, लेकिन इनका हाल यह है कि ये आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते, इनको ये अच्छा ही नहीं लगता। आज आप देखिए कि मुसलमानों के अंदर कितना ज़्यादा बिगाड़ है ना, अकीदे के नाम पर। पूरी मूसा की कहानियों के बाद अब बार बार ये कहा जाना कि आप इधर नहीं थे, आप उधर नहीं थे, आप यहाँ नहीं थे, वो नहीं थे, क्या बताया जा रहा है कि मक्का वालों को आपकी कदर करनी चाहिए। इनको घर बैठे बिठाए इतना इल्म मिल रहा है, कौन इनको तूर की कहानियाँ सुनाता, कौन इनको मदियन की बातें सुनाता, कौन फिरौन की कहानियाँ सुनाता। आप देखिए कि इल्म का जो पानी होता है ना, ये कई घाटों से पानी पीने के बाद मिलता है। किसी भी बस्ती में अगर कोई ऐसा शख्स इल्म देने वाला पहुँचे या उनको पैगाम दे दे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों के पास पहुँचे, तो ये उस बस्ती पर अल्लाह का एहसान है। मसला आप देखिए कि बादल, किसी बस्ती पे बारिश होती है तो उससे सरसब्जी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन बादल बना सकती है हर बस्ती? क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है बादलों के लिए? समंदरों की, हवाओं की। क्या हर मुल्क के हर शहर में एक समंदर है? हर जगह हवाएं उसी रुख पे चलती हैं जो बादलों को ले जाएं। तो बारिश होती है तो वो बस्ती सरसब्ज होती है ना, इसी तरह जब इल्म की बारिश किसी एक शहर पे बरसती है तो ये अल्लाह का एहसान है कि हर जगह हर एक ना जा सकता है ना आ सकता है, और ये फितरत का तकाजा भी नहीं है। तो मक्का वालों, तुम्हें अल्लाह के नबी के इस पैगाम की कदर करनी चाहिए। कैसे तुम्हें हजरत शुएब के बाद कोई डराने वाला नहीं आया था, और ये शख्स तुम्हारी हिदायत की कोशिश कर रहा है, तुम ये बातों को ना जानते थे ना तुम्हारे बड़ों ने कभी बातें सुनी थी, और अब तुम शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला तुम्हें दे रहा है। हज़रत इस्माइल और शुएब के बाद तकरीबन 2000 की बरस जो थे, इस दौरान अरब की सरजमीन में कोई नबी नहीं आया था। इर्द गिर्द थे, मूसा थे, सुलेमान थे, ईसा थे, लेकिन मक्का में कोई नहीं था। तो अल्लाह ताला उनको कदर करवा रहा है कि देखो कितनी बड़ी तुम्हें नेमत दी। करते तुम क्या थे जब कभी कोई मूसा से पहले नबी आता था? उन मुतालबों का तज़किरा आगे है। जिस कौम की तरफ अल्लाह के नबी को भेजा गया था उनके पास पहले कुछ नहीं था। इस सारी बात का जवाब हमें अगले लेसन में मिलेगा कि कौम किस तरीके से ये बातें करती थी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और बनी इसराइल वाले रवैयों से बचाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।